आना, क्या पढ़ रही थी आप?
कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास कर रहे थे।
आना ने झट से बुक को अपने पीछे छुपाना चाहा, पर अक्षय ने उसकी कलाई थाम ली। इधर दिखाइए जरा, मैं भी तो देखूं कि ऐसा भी क्या पढ़ रही थी आप कि उसमें इतनी खोई थी कि आपको मेरे आने तक का भी एहसास नहीं हुआ और अब बुक मुझसे छुपा भी रही हैं।
आना ने कोई विरोध नहीं किया। अक्षय ने उसके हाथ से बुक लेकर उसके कवर पर लिखे शब्द को पढ़ा।
गजल। आपको गजल पढ़ने का शौक भी है? सवाल करते हुए उसने निगाहें आहाना की ओर घुमाई और जवाब में आहाना मुस्कुरा दी।
पढ़ने का शौक है, गजल हो, कविता हो या कहानी।
अच्छा, तो जरा मेरे लिए गजल सुनाइए, अक्षय ने उसके पास बैठते हुए फरमाइश की।
आहाना उसकी बात सुनकर चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी करके हैरत से उसे देखने लगी।
आपके लिए?
मेरे लिए कुछ ऐसा जो मेरे लिए आपके जज्बातों और एहसासों को जाहिर कर सके।
गहरी निगाहों से आहाना को देखते हुए अक्षय शरारत से मुस्कुराया।
आहाना उसकी शरारत समझते हुए पहले तो नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखने लगी, फिर मुंह बिचौड़ते हुए बोली,
आपके लिए नहीं सुनाएंगे, जो हमें पसंद है वो सुनाएंगे।
उसकी इस अदा पर अक्षय हंस पड़ा।
चलिए तो जो आपको पसंद है वही सुना दीजिए।
आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दुल दुखाती रही रात भर, गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शमे गम झिलमिलाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा सायाए शाखे गुल के तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो ना आया उसे कोई जंजीरे दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। फैज साहब की लिखी गजल है, हमें बहुत पसंद है।
है भी बहुत प्यारी, और सिर्फ गजल नहीं, किसी के दिल का हाल बयां कर रही है।
किसके?
आहाना ने तुरंत ही आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा।
अक्षय उसके जरा करीब आया और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया,
मेरे दिल का हाल बयां कर रही है। जब आप मेरे पास नहीं होती तो यही हाल होता है आपकी याद में मेरा।
आहाना पहले तो हैरत से आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित सी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी पलकों को फड़फड़ाया और अक्षय के सीने पर अपनी हथेली टिकाते हुए उसे खुद से दूर धकेलने लगी।
हटिए जरा आप, हमारे ऊपर ही चढ़ गए, सांस नहीं आ रही हमें।
आहाना के कान जल उठे थे। जाने ये अक्षय की निगाहों का असर था या दिल में कैद जज्बातों का, कि आहाना के सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क उठा था और सांसें बेचैन हो उठी थीं। अक्षय की इन करीबियों से कुछ कुछ होने लगा था उसे, इसलिए उसने उसको खुद से दूर धकेला। पर अक्षय उसकी हथेलियों को थामते हुए उसके और करीब आ गया और अपनी हथेली में समाई उसकी हथेली को उसके सीने पर रख दिया।
आहाना, ये आपके सीने में मौजूद दिल मुझे इतना बेचैन क्यों लग रहा है? देखिए, इतनी तेजी से धड़क रहा है कि आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी नज़दीकियों का असर है कि आपकी धड़कनों पर आपका इख्तियार न रहा और आपका दिल बागी बनकर बगावत पर उतर आया है?
हाय, शोक चंचल निगाहों से आहाना को छेड़ते हुए कातिलाना मुस्कान उसके लबों पर बिखरी थी और आहाना जो पहले ही कुछ अनकहे से एहसासों में उलझी थी खुद में ही सिमट गई थी।
आप जानबूझकर छेड़ रहे हैं ना हमें? उसकी काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें नाराजगी से उसे तकने लगी थी।
अक्षय की मुस्कान गहरी हुई और अगले ही पल उसने आहाना को अपनी बाहों में समेट लिया था।
आप नहीं छेड़ता आपको जान?
आहाना उसके मुंह से ये संबोधन सुनकर पहले तो चौंक गई, फिर शर्माकर उसके सीने में सर छुपाते हुए उसकी बाहों में सिमट गई।
अभिजीत जी और रूपाली जी आज उनके किसी दोस्त के बेटे की शादी में बारात में शामिल होने गए थे। अन्वय शोरूम से अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाने वाला था। अक्षय आज देर से आने वाला था, इसलिए आहाना और वो घर पर रुकने वाले थे। दोपहर बाद मिस्टर एंड मिसेस सहगल निकल गए थे। जाते जाते आहाना को ढेरों हिदायतें दे गए थे क्योंकि वो घर में अकेली थी। रूपाली जी के जाने के बाद आहाना को आराम था। छत पर से वो सूखे कपड़े उतार लाई, उन्हें तह लगाकर उनकी जगह पहुंचाने के बाद दोपहर के बर्तन धोए। सब काम खत्म करने के बाद उसने घर पर सबसे बात की, फिर नॉवल लेकर बैठ गई। घड़ी ने शाम के 5 बजाए और डोरबेल बज उठी। आहाना की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ते हुए आपस में जुड़ गई। इस वक्त कौन आया होगा, यही सवाल उसके मन में चल रहा था। उसने नॉवल बंद करके टेबल पर रखा, फिर उठकर गेट की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोला तो सामने कोई खड़ा था जिसका चेहरा उसके हाथ में पकड़े बुके से ढका हुआ था, पर कपड़ों को देखकर आहाना पल भर में उस शख्स को पहचान चुकी थी। हटा लीजिए बुके, हमने पहचान लिया है आपको,
उसके इतना कहते ही उस शख्स ने बुके नीचे किया और अक्षय का नाराजगी भरा चेहरा उसके सामने आ गया।
आप हमेशा मेरा सरप्राइज खराब क्यों कर देती हैं? अपना चेहरा छुपाकर आप हमें सरप्राइज देने आए हैं? आपको सच में लगा था कि आप चेहरा छुपा लेंगे तो हम आपको पहचान नहीं सकेंगे?
आहाना ने गंभीर स्वर में सवाल किया, जिस पर अक्षय ने पहले मुंह बनाया फिर बुके उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट।
आहाना ने बुके थाम लिया, फिर उन खूबसूरत फूलों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हैं।
मीठी सी मुस्कान आहाना के लबों को चूम गई।
आहाना, मुझे इस वक्त यहाँ देखकर भी आप सरप्राइज नहीं हुई?
अक्षय ने अंदर आते हुए सवाल किया।
आहाना ने दरवाजा बंद किया, फिर उसकी ओर पलटते हुए बोली, सरप्राइज नहीं पर हैरान जरूर हुई। आपने तो पापा जी को कहा था कि आपको आने में देर होगी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए आप?
घर पर अकेली थीं,
भला आपके साथ तन्हाई में कुछ हसीन पल बिताने का सुनहरा मौका मैं यूं ही कैसे छोड़ देता। अक्षय ने कातिलाना मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया और उसकी बात सुनकर आहाना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मतलब आपने पापा जी से झूठ कहा कि आज आपको आने में देर होगी ताकि आपको उनके साथ ना जाना पड़े? मैं शादी में जाकर क्या करता? अभी तो मैंने अपनी शादी अटेंड की है, अब तो फिलहाल मुझे अपनी उस नई नवेली बीवी के साथ कुछ वक्त तन्हाई में बिताने की जरूरत है। अक्षय का बेफिक्री भरा जवाब सुनकर आहाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके रिएक्शन को देखकर अक्षय ने संजीदगी से आगे कहा, अगर मैं झूठ नहीं कहता तो मुझे ये जो वक्त मिला है आपके साथ वो नहीं मिलता, और इस झूठ से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, इनफैक्ट हमारा फायदा ही हुआ है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए। सही तो कह रहा था वो, ऐसे तो रात के अलावा दोनों को वक्त ही नहीं मिलता था। इस झूठ की वजह से कुछ वक्त तो मिलेगा उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले में बिताने को। यही सोचते हुए आहाना के चेहरे के भाव कुछ सामान्य हुए और उसने सर हिलाते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। हम कॉफी बनाते हैं आपके लिए? बना दीजिए, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। अक्षय ने हामी भरी और बैग थामे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर चाय कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे और साथ में अक्षय ने टीवी में रोमांटिक सॉन्ग्स भी बजा लिए थे। डिनर में क्या खाएंगे आप? घड़ी के साथ बजाए और आहाना अपनी कमर पर लिपटी अक्षय की बाहों को हटाते हुए उठ खड़ी हुई। रात का खाना जो बनाना था उसे, आज आप आराम करेंगी? अक्षय ने उसकी बाह थामते हुए उसे वापस अपने पास बिठा लिया था। अक्षय की बात सुनकर आहाना ने निगाहें घुमाकर उसे देखा और भौं हुचकाते हुए सवाल किया, अच्छा और काम कौन करेगा? अभी तक तो हमने डिनर भी नहीं बनाया है। डिनर आज मैं बनाऊंगा आपके लिए, अक्षय ने सहजता से जवाब दिया। पर आहाना उसकी बात सुनकर चौंक गई, आपको खाना बनाना आता है? आपके जितना स्वादिष्ट तो नहीं, पर आप खा सके इस लायक तो बना ही लूंगा। आहाना उसका जवाब सुनकर पल भर को उसे देखती रही, फिर उसकी हथेली अपनी कलाई पर से हटाते हुए बोली, बहुत हो गई बातें, अब आप हटिए, आप हाथ छोड़िए हमारा, हम जाकर डिनर बनाने की तैयारी करें। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगी? अक्षय ने गहरी चेतावनी भरी निगाहों से उसे देखा, फिर एकाएक उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया।
गिरने के भय से आहाना ने घबराकर उसकी टी शर्ट के कॉलर को अपनी मुठ्ठियों में भींच ली और फटी आंखों से उसे देखते हुए अचंभित सी बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए हमें। नहीं, अब आप सीधे रूम में जाकर ही मुझसे दूर जा सकेंगी, इसलिए चुपचाप बैठिए और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, अक्षय ने सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए कठोर लहजे में कहा। आहाना इसके बाद भी चुप न हुई, वो लगातार उसकी बाहों से नीचे उतरने को मचलती रही, उसे नीचे उतारने को कहती रही, पर ना तो अक्षय ने उसकी बात सुनी और ना ही उसे नीचे उतारा। उसके कदम सीधे कमरे आकर रुके। बाथरूम के पास उसने आहाना को खड़ा किया और खुद कबर्ड की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वापस लौटकर उसके पास आया। आहाना अपने दोनों गालों को गुब्बारे जैसे फुलाए नाराजगी भरी नजरों से उसे घूर रही थी। मुझे घूरना बंद कीजिए और जाकर इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए, पर जब तक मैं न कहूँ इस कमरे से बाहर एक कदम भी मत रखिएगा, समझी? हम आपकी बात क्यों माने? आपने मानी थी हमारी बात जब हम आपको नीचे उतारने कह रहे थे? गालों को फुलाए खड़ी नाराज आहाना तुनकते हुए बोली। अक्षय ने भी उसी के अंदाज में पलट कर जवाब दिया,